अगला शीर्षक है केशव की भाव व्यंजना और इसे लिखा है डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने। प्रबंध ग्रंथों में प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। इस कसौटी पर केशव की रामचंद्रिका को कसने से ज्ञात होता है कि अधिकांश स्थलों पर मार्मिकता के साथ अनुरक्त होने वाली सहृदयता केशव में न थी। रामकथा के अंतर्गत दशरथ मरण और राम वन गमन, चित्रकूट में राम भरत मिलाप, सबरी का आतिथ्य, सीता हरण और लक्ष्मण शक्ति के बाद राम विलाप आदि स्थल अधिक मर्म स्पर्शी हैं। प्रायः इन सभी स्थलों पर केशव की रागात्मिका वृत्ति लीन होती नहीं दिखलाई देती, कदाचित इसलिए बहुधा लोग केशव को हृदयहीन कह डालते हैं। किंतु बुढ़ापे में पनघट पर मृगलोचनी कामिनियों द्वारा बाबा कहकर संबोधित किए जाने पर अपने सफेद बालों को कोसने के लिए प्रसिद्ध कवि हृदयहीन था यह कहना उचित न होगा। केशव में भिन्न भिन्न मानव मनोभावों को परखने की पूर्ण क्षमता थी। इस कथन के प्रमाण स्वरूप रसिक प्रिया और कवि प्रिया के स्फुट छंद उपस्थित किए जा सकते हैं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में भी केशव के संवाद उनके मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण का परिचय देते हैं। संवादों से इतर स्थलों पर भी कवि ने भिन्न भिन्न प्रकृत भावों को सुंदर व्यंजना की है, यद्यपि ऐसे स्थल कम अवश्य हैं। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले जा रहे हैं, उनके अलौकिक सौंदर्य को देखकर भोले भाले वनवासी मोहित और किंकर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। उनका हृदय तर्क वितर्क में पड़ जाता है और वे मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, यह लोग कौन हैं। किंतु जब वे कुछ निश्चय नहीं कर पाते और उनका चित्त भारी भ्रम में उलझ जाता है, तो मानवोचित स्वाभाविक उत्सुकतावश वे राम से एक ही सांस में अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। कौन हो कितते चले, कित जात हो के ही कामजू, कौन की दुहिता बहु कही, कौन की यह वामजू। एक गांव रहो की साजन, मित्र बंधु बखानिए, देश के पर देश के किंधो पंथ की पहचानिए। शोक का वर्णन कवि ने तीन स्थलों पर किया है। सीता हरण और लक्ष्मण शक्ति के बाद राम की शोक विफल दशा के चित्रण में तथा मेघनाथ वध के पश्चात रावण की दशा के वर्णन में। मारीच रूपी स्वर्ण मृग को मारने के बाद जब राम अपनी कुटी को वापस आकर सीता को नहीं पाते, तो उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से अनेक तर्क वितर्क उठते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि कहीं सीता स्नेहवश मुझे ढूंढने वन में तो नहीं गई, अथवा तुमसे कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई जिस दुख में वह कहीं छिपी बैठी हो, अथवा यह कोई अन्य पर्ण कुटी तो नहीं। निज देखो नहीं सुभ गीत ही, सीत ही कारण कौन कहो अब ही। अति मोहित कै बन मांझ गई, सुर मारग में मृग मार्यो जही। कटु बात कछु तुम सो कही आई, किंधो ते ही त्रास दुराय रही। अब है यह पर्ण कुटी किंधो, और किंधो वह लक्ष्मण होई नहीं। आशा के क्षीण तंतु के सहारे राम सीता की खोज करते आगे बढ़ते हैं, किंतु मार्ग में जटायु से यह समाचार पाकर कि सीता को रावण हर ले गया, राम पर एकाएक असनिपात हो जाता है जो उन्हें पागल बना देता है। सीता के प्रेम से विह्वल राम विलाप करते हुए पक्षियों और वृक्ष लताओं आदि से करुणापूर्ण शब्दों में पता पूछते हुए दिखलाई देते हैं। चक्रवाक्य के जोड़े को देखकर राम उनसे कहते हैं कि जब जब तुम सीता को हमारे साथ देखते थे तो तुम्हें दुख होता था, आज मुझे सीता से वियुक्त देखकर कदाचित तुम्हें संतोष हो रहा हो, किंतु वैर भाव त्याग कर हमारी दशा पर सहानुभूति दिखलाते हुए तुम्हें सीता का पता बता देना चाहिए। अवलोकत है जब ही दुख होत तुम्हें तब ही यह वैर न चित्त कछु धरिए, सिय देहु बताए कृपा करिए। कुछ और आगे बढ़ने पर राम चकोर से कहते हैं कि चकोर, जिस सीता के चंद्रमुख को देखकर तुम चंद्रमा को भी भूल जाते थे, जिनके मुख को देखकर तुम जीवन धारण करते थे, आज वही सीता खो गई है। अतएव सीता के उपकारों को स्मरण कर उसकी खोज में तुम मेरी सहायता करो। शशि को अवलोकन दूर किए, जिनके मुख की छवि देखी जिए, कृति चित चकोर कछुक धरो, सिय देहु बताए सहाय करो। आगे बढ़ने पर करुणा नामक वृक्ष को देखकर राम कहते हैं कि हे करुणा मकरंद के प्रार्थी, भौरे को चंपा पुष्प के पास भी फटकने नहीं देता। इस प्रकार वह याचक का शत्रु है, अतएव मैं उसके पास सीता का पता पूछने नहीं गया। अशोक शोक रहित है, अतएव वह मेरे शोक का अनुभव नहीं कर सकता। केवड़े केतकी गुलाब आदि के पास जाना भी व्यर्थ है, क्योंकि यह सब तीक्ष्ण स्वभाव वाले हैं। तुमको सज्जन जान, हम तुमसे ही सीता का पता पूछने आए हैं, किंतु तुम भी मौन हो, क्या यह उचित है? तुम तो करुणा मैं हो, तुमको तो मुझ पर दया कर सीता का पता बताना ही चाहिए। बोलो, बताओ सीता कहाँ है? कही केशव याचक के अरि, चंपक शोक अशोक भय हरि कह। लखी केतक केतकी जाति, गुलाब ते तीक्ष्ण जानी तजे डारिक। सुनी साधु तुम्हें हम बूझन आए, रहे मन मौन कहा धारिक। सिण को कछु साधु कहो, करुणा मैं हे करुणा करुणा करिक। राम के शोक का दूसरा स्थल है लक्ष्मण शक्ति। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर एक बार फिर राम के हृदय के बांध टूट गए और उनके नेत्रों से अश्रु सरिता प्रवाहित हो गई। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, एक बार तो मेरी ओर देखो, मेरे प्राण जा रहे हैं, उन्हें बचाओ। मैं तुम्हारे किन किन गुणों का स्मरण करूं? तुम तो भाई होते हुए भी पुत्र के समान मेरी आज्ञा का पालन करते थे और पुत्र के समान आचरण करते हुए भी मित्र के समान मेरी सहायता करते थे। तुम मेरी आँखों की ज्योति थे और तुम ही मेरे अस्त्र शस्त्र तथा बल विक्रम थे। आज तुम्हारे बिना मैं निशस्त्र और निर्बल हूँ। एक बार तो आंखें खोलकर मेरी ओर देखो, सत्य समझो, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगा। मुझे प्राणों का मोह नहीं, दुख केवल इस बात का है कि विभीषण को लंका देने का वचन न पूरा कर सका। अपने प्रभु की सेवा और सहायता के लिए तुम सदैव तत्पर रहते थे, क्या अपने प्रभु को कलंकित होते देख सकोगे? कदाचित नहीं, तो उठो और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करो। लक्ष्मण राम जही अवलोक्यो, नैनन ते न रह्यो जल रोक्यो। बारक लक्ष्मण मोहि विलोको, मोकह प्राण चले तजी रोको। हौ सुमिर गुण केतिक तेरे, सोदर पुत्र सहायक मेरे। लोचन बान तुहि धनु मेरो, तू बल विक्रम बारक हेरो। तू बिन हौ पल प्राण न राखौ, सत्य कहो कछु झूठ न भाखौ। मोहि रही इतनी मन शंका, देन न पाई विभीषण लंका। बोली उठो प्रभु को प्रण पारो, नातरु होत है मोमुख कारो। लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ का वध किए जाने पर इसी प्रकार रावण पर एकाएक शोक का पहाड़ टूटा था, जिसके फल स्वरूप रावण का कठोर हृदय भी शोक विफल हो गया। अब मनुष्य पर अचानक कोई बहुत बड़ा दुख पड़ता है तो उसे जीवन सुख और संसार से विरक्ति हो जाती है और असीम निराशा की दशा में वह सब ओर से उदासीन हो जाता है। मेघनाथ के वध से रावण की भी यही दशा हुई थी। ऐसे ही मानसिक स्थिति में रावण कहता है कि आज से सूर्य जल वायु अग्नि चंद्रमा आदि मेरी ओर से निडर होकर आनंद पूर्वक विचरण करें, किन्नर गान करें, गंधर्व नाचें और यक्ष सुखपूर्वक करदम का लेप करें। ब्रह्मा रुद्रादि तीनों लोक के देवता जाकर इंद्र का अभिषेक करें। सीता राम को और लंका का राज्य कुलद्रोही विभीषण को दे दिया जाए। ब्राह्मण गण भी स्वच्छंदता पूर्वक जाकर यज्ञ अनुष्ठान आदि कृत्य करें। आजू आदित्य जल पवन पावक प्रबल, चंद आनंद भय त्रास जग को हरो। गान किन्नर करो नृत्य गंधर्व कुल, यक्ष विधि लक्ष्य उर यक्ष करदम धरो। ब्रह्मा रुद्रादि दय देव तिहु लोक के, राज को जाय अभिषेक इंद्र ही करो। आजू सिय राम दय लंक कुल दूषण ही, यज्ञ को जाय सर्वज्ञ विप्रहु बरो। जिस समय रंचमात्र आशा न हो, उस समय यदि किसी मनुष्य की प्रिय वस्तु अथवा प्रिय समाचार प्राप्त हो जाता है तो एकाएक उसे अपने नेत्रों अथवा कानों पर विश्वास नहीं होता और बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। नव पल्लव युक्त अशोक से अग्नि की याचना करने पर, अग्नि के स्थान पर राम की मुंदरी मिलने पर सीता के हृदय की यही दशा हुई थी। मुंदरी पर राम का नाम पढ़कर सीता की मति भ्रम में पड़ गई। उन्हें एकाएक विश्वास न हुआ कि यह राम की ही मुद्रिका है। उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से तर्क वितर्क होता है कि लड़कपन से इस मुंदरी को राम अपने हाथ में धारण करते रहे हैं, यह किस प्रकार उनसे वियुक्त हुई अथवा इसे यहाँ कौन लाया, यह भेद किस प्रकार ज्ञात हो, किससे पूछने जाऊं। जब बाँची देख्यो नाऊ, मन पड़्यो संभ्रम भाऊ, आबाल ते रघुनाथ यह धरी अपने हाथ, बिछुड़ी सु कौन उपाऊ, के ही आनियो यही ठाऊ, सुधी लहो कौन प्रभाव, अब काही बुझन जाऊं। रावण वध के पश्चात हनुमान द्वारा रामादि के प्रत्यागमन का समाचार सुनकर भरत के हृदय की भी कुछ ऐसी ही दशा हुई थी। यद्यपि इस अवसर पर जड़ मुंदरी के स्थान में चैतन्य हनुमान जी संवादवाहक के रूप में भरत जी के पास आए थे, हनुमान जी से यह सुखद समाचार सुनकर भरत सुखसागर में निमज्जित हो गए और एकाएक इस समाचार की सत्यता पर उन्हें विश्वास न आया। वे सोचने लगे, हे ईश, हनुमान जी मुझसे क्या कह रहे हैं, क्या यह सच है अथवा मैं स्वप्न देख रहा हूँ। सुनी परम भावती भरत बात, भये सुख समुद्र में मगन गात, यह सत्य किंधौ कछु स्वप्न ईश, अब कहा कहयो मोसन कपीस। केशवदास जी ने हर्ष की भी बड़ी सुंदर व्यंजना की है, चिर वियोग के बाद प्रीतम की मुद्रिका पाकर सीता जी को जो हर्ष हुआ होगा वह अवर्णनीय है। कविवर केशवदास ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सीता जी ने मुद्रिका का वर्णन नाना प्रकार से कराकर सीता के हर्षातिरेक को व्यंजित किया है। हर्षातिरेक में जड़ मुंदरी को सजीव मानकर उससे सीता का बातचीत करना भी मनोवैज्ञानिक है। सुंदरी के प्रति सीता का उपालंब है, श्रीपुर में वंद मध्य हो तू मग करी अनीति, री मुंदरी अब तियन की को करी है प्रतीति। आगे सीता जी उससे राम की कुशल पूछती हैं, किंतु उससे उत्तर न देने पर हनुमान से उसके मौन का कारण पूछती हैं। कही कुशल मुद्री के राम गात, शुभ लक्ष्मण सहित समान तात, यह उतरु देती नहीं बुद्धिवंत, के ही कारण धो हनुमंत संत। हनुमान जी ने भी बड़ी चतुरता के साथ मुंदरी के मौन का कारण और सीता के मुंदरी के प्रति किए गए प्रश्न का उत्तर एक ही साथ दे दिया। तुम पंचत कही मुद्री के मौन होत यदि नाम, कंकन की पदवी दई तुम बिना या कह राम। लज्जा भारतीय ललनाओं का भूषण है। केशवदास जी ने एक स्थल पर कुलवधुओं की लज्जा की भी मनोहर व्यंजना की है। राम के रनिवास की कामिनियां वाटिका विहार के लिए गई हैं, एक स्थान पर वह देखती हैं कि रस लोलुप भौरे भौरियों के समान ही मालती का चुंबन कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे ललनाएं लजा जाती हैं और घूंघट के भीतर ही भीतर मुस्कुराती हैं। अली उड़ी धरत मंजरी जाल, देखी लाज साजती सब बाल, अली अलिनी के देखत धाई, चुंबत चतुर मालती जाई, अद्भुत गति सुंदरी विलो की, वी हंसती है घूंघट पटरों की। हास्य की एक झलक उस समय दिखलाई देती है जब रावण का यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए हुए बानरगण रावण की चित्रशाला में मंदोदरी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं। अंगद चित्र खचित पुतलियों को रावण की रानियां समझकर पकड़ने दौड़ते हैं, किंतु जब निकट पहुंचते हैं तो उन्हें अपना भ्रम ज्ञात होता है। यह देख देख कर वहां छिपी देवकन्याएं हंसती हैं। भागी देखी कै संकी लंकेश बाला, दुरी दौरी मंदोदरी चित्रशाला, तहां दौरीगी बाली को पुत फल फूल ल्यो, सबै चित्र की पुत्रिका देखी भूल ल्यो, गहे दौरी जाको तजय ता दिशा को, तजय जादिसा को भजय वामता को, भले कह निहारी सभे चित्र सारी, लहे सुंदरी क्यों दरी को बिहारी, तजय देखी के चित्र की श्रेष्ठ धन्या, हसी एक ताको तही देव कन्या। सीता को खोज लगाकर वापस लाए हुए हनुमान जी की राम द्वारा प्रशंसा किए जाने पर हनुमान के शब्दों में स्वाभाविक दीनता का प्रकाशन है। हनुमान जी कहते हैं कि हे महाराज, आप व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा करते हैं, मैंने किया ही क्या है, आपकी मुद्रिका मुझे समुद्र के उस पार ले गई और सीता जी की मणि के प्रभाव से मैं इस ओर आ गया हूँ। लंका जलाकर भी मैंने कौन सा विक्रम किया है, वह तो स्वयं मृत थी, अक्षय कुमार को मारा, वह भी निर्बल बालक था, तदनंतर शत्रु द्वारा बांधा गया, यदि बलि होता तो बांधा ही क्यों जाता, वृक्ष अवश्य तोड़े किंतु वे जड़ थे। इस प्रकार मैंने कुछ भी तो विक्रम नहीं किया जो इस प्रकार आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। गई मुद्रिका लय पार, मनी मोही लाई बार, कह करे मैं बाल रंक, अति मृतक जारी लंक। अति हत्यो बालक अच्छ, लय गयो बांधी विपच्छ, जड़ वृक्ष तोरे दीन, मैं कहाँ विक्रम कीन। विरोचित उत्साह की व्यंजना केशव ने कई स्थलों पर बड़ी मार्मिक की है। महाबली कुंभकर्ण युद्धस्थल में रामचंद्र जी से कहता है, हे राम, मुझे ताड़का या सुबाहु न समझना, जिसको तुमने सहज ही मृत्यु के घाट उतार दिया। मैं शिव पिनाक भी नहीं हूँ, जिसे तुमने फूल की तरह तोड़ डाला। मैं ताल नहीं हूँ और न बाली अथवा खर हूँ, जिसे तुमने बेद कर रख दिया। खर दूषण भी नहीं हूँ, जो तुम्हारे बाणों का लक्ष्य हो गया। तनिक सामने देखो, मैं देव और असुर कन्याओं से भोग करने वाला तथा महाकाल का भी काल कुंभकर्ण हूँ। राम, मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। लंका आकर तुम्हें गर्व हो गया है, आज संसार के सामने तुम्हारा बल प्रकट हो जाएगा। न हो ताड़का, हो सुबाहो न मानो, न हो शंभु को दंड साची बखानो, न हो ताल बाली खरे जाही मारो, न हो दूषण सिंधु सुधे निहारो। सूरी आसुरी सुंदरी भोग करने, महाकाल को काल हो कुम करने। सुनो राम संग्राम को तो ही बोलो, बढ़ो गर्व लंका ही आए सुख खोलो। आगे चलकर कुंभकर्ण और मेघनाथ के वध के पश्चात निराश रावण को उत्साहित करता हुआ वीर मकराक्ष कहता है कि मेरे सामने कुंभकर्ण और इंद्रजीत क्या है, एक सोया करता था और दूसरा डरते हुए युद्ध करता था। जब तक आपका यह दास जीवित है, तब तक सीता को यहाँ से कौन ले जा सकता है। महाराज, आप निश्चिंत होकर लंका का राज होगी, मुझे युद्ध के लिए शीघ्र विदा मात्र कर दीजिए। विश्वास रखिए, मैं युद्ध में सुग्रीवादी सहित राम लक्ष्मण को परम धाम पहुंचा दूंगा और अयोध्या पर अधिकार कर उसे आपकी राजधानी बनाकर रहूंगा। कहा कुंभकर्ण कहा इंद्रजीत, करे सोईबो वा करे युद्ध भीत, सुन जौलो जियो हो सदा दाल मेरे, सिया को सकैल सुनो मंत्र मेरे। महाराज लंका सदा राज की जय, करो युद्ध मोको विदा वे की दी जय। हतो राम स्यो बंधु सुग्रीव मारो, अयोध्या ही लय राजधानी सुधारो। इसी प्रकार शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लव के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का कथन है, माँ तू व्यर्थ ही शोक करती है, यदि शत्रु स्वयं यमराज है तो भी मैं उसको मारकर और उसके दल को नष्ट कर लव को छुड़ा लूंगा। हे माँ, तभी आकर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। रिपु ही मारी संहारी, दल यम ते लेहूं छड़ाए, लव ही मिले हो देखी हो माता तेरे पाए। वहीं कुछ लक्ष्मण से वीर के सामने आकर भी असीम उत्साह से उन्हें ललकार कर कहता है, हे लक्ष्मण, मुझे मकराक्ष या इंद्रजीत समझने की भूल ना करना, जिन्हें तुम अपने बाणों का लक्ष्य बना चुके हो। यहाँ हम तुम्हें रण में सम्मुख देखकर विचलित होने वाले नहीं हैं। जिस यश का आज तुमने संचय किया मुझसे युद्ध कर, उसे क्यों गवाते हो? लक्ष्मण, मुझसे युद्ध कर अपनी माता को व्यर्थ ही अनाथ मत करो। न हो मकराक्ष न हो इंद्रजीत, विलोक तुम्हें रण हो हूँ न भीत, सदा तुम लक्ष्मण उत्तम गाथ, करो जनी आपनी मातु अनाथ। मुक्तक रचनाओं में केशवदास जी प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक रचनाओं में विभिन्न मानव भावों के प्रत्यक्षीकरण में अत्यधिक सफल हुए हैं। प्रेम संसार का मूल है। केशव ने भी अधिकांश मुक्तकों में नायक नायिका के प्रेम और विभिन्न अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में प्रेमिका के भावों की गंभीर और मार्मिक व्यंजना की है। इन मुक्तकों में रसराज कृष्ण तथा गोपियां आलंबन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। अस्तु, प्रेम का अंकुर धीरे धीरे उत्पन्न और पल्लवित होता है। नायिका ने नायक के गुणों के विषय में सुना, जिसे सुनकर उसके दर्शन की लालसा हुई। दर्शन मिले पर ठगोरी लग गई। नायक ने नायिका के हृदय में घर कर लिया और अब तो चाहने पर भी वह हृदय से दूर नहीं होता। सोहे दिवाए दिवाए सखी, इक बारक कानन आन बसाए, जाने को केशव कानन ते, कि तो है हरि नैनन मांज सिधाए। लाज के साज धरे ही रहे, तब नैनन ले मन ही सो मिलाए, कैसी करो अब क्यों निकसो, ही हरे हिय में अरियाए। किसी से प्रेम हो जाने तथा उसके ना मिलने पर ना तो खेल अच्छा लगता है और ना हंसी। गीत की ध्वनि बाण के समान प्रतीत होती है, वस्त्र और श्रृंगार की ओर से अरुचि हो जाती है। प्रेमी से साम्य अथवा संबंध रखने वाली वस्तुएं ही अच्छी लगती है। केशव के नायक रसराज कृष्ण की भी यही दशा है। खेलत न खेल कछु हसी न हसत हरी, सुनत न गान कान तान बान सी बहे, ओढ़त न अंबर न डोलट दिगंबर सो, संबर ज्यों संवरारी दुख देह को दहे, भूली हूँ न सूंघे फूल फूल तूल कुम्हिलात, गात खात बिरहु न बात काहू सो कहे, जानी जानी चंदमुख केशव चकोर सम, चंदमुखी चंद ही के बिंब ज्यों चितय रहे। बिहारी की नायिका बतरस के लालच से कृष्ण की मुरली लुकाकर रख देती है। इधर केशव के कृष्ण इसी उद्देश्य से एक गोपी को मार्ग में घेरकर खड़े हो जाते हैं और उससे दधी मांगते हैं। गोपी कृष्ण को दही देने की इच्छा रखते हुए भी नहीं देती और उन्हें खिजाती है। यह प्रेम की रार है, बातों में रस का सागर छलक रहा है। दय दधि दीनों उधार हो केशव, दानी कहा जब मोल लेखे हैं, दीन है बिना तू गई जुगई, ना गई घर ही फिर जय है। गोहित बैरु कियो हित हो कब, बैरु किए बरु नीके ही रहे, बैर के गोरस बेचु हुईगी अहो बेचो न बेचो तो ढारी न दे है। यदि प्रेमी अपने प्रिय से हंसी में भी कोई तीखी बात कह देता है तो उसके हृदय पर गहरी चोट लगती है। एक दिन कृष्ण ने अपनी प्रेमिका से हंसी ही हंसी में कह दिया कि जिसको पिता ने अपने घर से निकाल दिया उससे उनसे प्रेम कैसे निप सकता है। यह सुनकर नायिका के अविरल आंसू बह चले और फिर उसे सांत्वना देना कठिन हो गया। एक समय एक गोपी सो केशव कैसा हूँ हंसी की बात नहीं, या कहा तात दई तजी जाही कहा हम सो रस रीति नहीं, को प्रति उत्तर देई सखी दृग आसुन की अवलो उमही, उर लाए लई अकुलाए तव अधिरातिक लो हिलकी न रही। प्रेम एकाधिपत्य स्वत्व चाहता है। प्रेम यह कभी सहन नहीं कर सकता कि उसका प्रिय किसी अन्य से भी प्रेम करे। एक बार एक गोपी कृष्ण से कुछ पूछ रही है, अचानक कृष्ण के मुख से किसी अन्य नायिका का नाम निकल गया। अब तो नायिका के हाथ का पान का बीड़ा हाथ में और मुंह में ही रह गया और आतुरता पूर्वक शब्दों के साथ ही आंखों से अश्रुधार प्रवाहित हो चली। बूझत ही वह गोपी गोपाल ही आजू कुछ हंसी के गुनगाथ ही, ऐसे में काहू को नाम सखी कही कैसे धो आई गयो ब्रजनाथ ही। खाती खवावती ही जू बिरी सू रही, मुख की मुख हाथ की हाथ ही, आतुर हुए उन आखिन तें असुआ निकसे अखरानी के साथ ही। मान प्रेम का आवश्यक अंग है, यह ऐसी प्रेम की रार है जो प्रेम रस को बढ़ाती है। मान दुधारू तलवार है जो प्रेमी और प्रेमिका दोनों पर असर करती है। नायिका ने एक बार अपने प्रिय से मान किया, वह मना कर हार गया किंतु वह न मानी, नायक को निराश जाना पड़ा। अब नायिका को स्वयं अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। पाई परे हूँ तय प्रीतम त्यों, कही केशव क्यों हूँ न मैं मृग दीनी, तेरी सखी सिस सीख न एकहू रोस ही की सिस सीख जूलीनी, चंदन चंद समीर सरोज जरै दुख देई भई सुख हीनी, मैं उल्टी जू करी विधि मोकह न्यायिन ही उल्टी विधि कीनी। अभिसार प्रेम परीक्षा की कसौटी है, लोक लज्जा को तिलांजलि दें बाधाओं का सामना करते हुए प्रिय से मिलने के लिए जाकर प्रेमिका अपने प्रगाढ़ प्रेम का परिचय देती है। प्रेम अंधा होता है। केशव की नायिका मार्ग में चलने वाले बालक वृद्ध और युवाओं की चिंता ना करती हुई प्रेमी से मिलने के लिए चली जा रही है। गोप बड़े बड़े बैठे अथाई नी, केशव कोटि सभा अवगाही, खेलत बालक जाल गलिन में बात विलोकी विलोक बिकाही, आवती जाती लुगाई चहु दिसी घूंघट में पहचानहती चाही, चंद सो आनंद काढ़ी कहा चली सूझत है कुछ तो ही की नाही। रात्रि का समय है, बादल घिरे हैं, घना अंधकार छाया है, कांटों और कीच का उल्लंघन करती हुई नायिका अकेली आई है, उसका साहस देखकर नायक भी चकित रह गया। आज इस प्रकार बिना बुलाए आकर नायिका ने नायक को मोल ले लिया। लीने हमें मोल अन बोले, आई जान्यो मोह, मोही घनश्याम घन माला, बोली लियाई हैं। देखो हुए हैं दुख दुख जहाँ, देहु न देखी परे, देखो जै कैसे बाट के सो दामिनी दिखाई है। ऊंचे नीचे बीच कीच, कंटकन पीड़े पग, साहस गयंद गति अति सुखदाई है। भारी भय कारी निसी, निपट अकेली तुम, नाही प्राणनाथ साथ प्रेम जो सहाई है। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि अनिवार्य है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और संयोग के बाद वियोग संसार का नियम है। किंतु प्रेमी के लिए अपने प्रिय से वियुक्त होने की संभावना ही कितनी दुखदायी है, यह वही समझ सकता है जिसने वियोग दुख को सहन किया है। आज केशव की नायिका का प्रेमी किसी कार्यवश परदेश जा रहा है। बेचारी नायिका किंग कर्तव्य विमूढ़ है। यदि वह रहने को कहती है तो प्रभुता प्रकट करती है, यदि वह कहती है कि जो ठीक समझो वही करो तो उदासीनता सूचित होती है, यदि कहती है कि साथ ले चलो तो लोक लज्जा का प्रश्न सामने आता है। अंत में वह अपने प्रिय से ही पूछती है कि उस अवसर पर उसे क्या कहना उचित होगा। जो हाँ कहो रहिए तो प्रभुता प्रकट होती, चलन कहो तो हितहानि नाही सहनो, भावे सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलहु कैसे लोकलाज बहनो। केसो राय की सो तुम सुनहु छबीले लाल, चले ही बनत जो पै नाही राजा रहनो। तैसिये सिखाओ सीख तुम ही सुजान प्रिय, तुम ही चलत मोही जैसो कछु कहनो। आज नायिका अपने प्रिय से वियुक्त है, आँख में से होड़ लगा रही है, सांसों के साथ ही रात्रि भी बढ़ती सी जा रही है और काटे नहीं कटती। हंसी भी लुप्त हो गई, नींद क्षण भर के लिए बिजली के समान आती और फिर न जाने कहाँ चली जाती। पपीहे के समान पी पी की रट लगी है, शरीर ताप से तप रहा है। इस प्रकार केशव द्वारा अंकित विरहणी का निम्नलिखित चित्र यथातथ्य है। मेह की है सखी आंसू उसासनी, साथ निसासु विसासिनी बाढ़ी, हासी गई उड़ी हासिनी ज्यों, चपला सम नींद भई गति काढ़ी। चातकी ज्यों पियु पियु रटै, चढ़ी चाप तरंगिनी ज्यों तन गाढ़ी, केशव वाकी दशा सुनी हो अब आगी बिना अंग अंगन डारी। ज्यों ज्यों दिन बीते वियोग व्यथा बढ़ती ही गई और अब तो उसकी दशा पागलों किसी हो रही है। वह चौंक कर इधर उधर देखती है, पृथ्वी पर अपनी ही परछाई देखकर डर सी जाती है तथा प्रश्न करने पर और का और उत्तर देती है। उसे न तो बड़ों के सामने घूंघट काढ़ने का ध्यान है और न वस्त्र संभालने का। आज उसकी सब सुधी भूल गई है, उसकी दशा ऐसी हो रही है जैसे उसे किसी की दृष्टि लग गई हो, सन्निपात ज्वर हो गया है अथवा किसी ने कुछ करा दिया हो। केशव चौकति सी चितवै, छिति पा धरकै तरकै तकि छाही, बूझिए और कहे मुख और सु और की, और भई क्षण माही। डीठी लगी किंधौ बाई लगी, मन भली पर्यो कै करो कछु काही, घूंघट की घटकी पटकी, हरि आजु कछु सुधी राधिकै नाही। सखियां समझाने आती हैं किंतु उसकी समझ में उनकी सीख नहीं आती और आए भी कैसे, उसकी बुद्धि तो प्रीतम के साथ ही चली गई। अंत में वे स्वाभाविक रूप से खींचकर चली जाती हैं। कौन के न प्रीति कौन प्रीतम ही न विछुरत, तेरे ही अनोखे पतिव्रत गायितु है, यतन करे ही भले आवे हाथ केशव दास, और कहो पच्छिन के पाछे धायतु है। उठी चलो जो न माने काहू की बलाई जाने, मान सो जो पहचाने ताके आयतु है, याके तो है आजू ही मिले की मरी जाऊ माई, आगी लागे मेरी आली मेई पायतु है। आज कृष्ण के परम सखा उद्धव गोपियों के पास कृष्ण का संदेशा लाए हैं, परंतु प्रेम का नहीं योग का संदेशा है। किंतु गोपियां तो योग विशेष का साधन कर रही थी, उनकी दृष्टि में उद्धव के तुच्छ योग का मूल ही क्या। अतएव राधा उद्धव को मुंह तोड़ उत्तर देती है, राधा राधा रमन के मन पठ्यो है साथ, उद्धव हा तुम कौन सो कहो योग की गाथ। अब भी उद्धव अपना राग अलापे ही जाते हैं। सुनते सुनते गोपियों के कान पक गए और वह खींच उठी, किंतु कहें क्या। एक तो उद्धव आज उनके अतिथि हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वह प्रियतम की सखा हैं। अतएव वे इतना ही कहकर रह जाती हैं कि हे उद्धव, हृदय में अच्छी तरह समझ लो, यदि अब भी तुम ना माने तो अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा। कहाँ कहाँ तुम पाहुने प्राणनाथ के मित्र, फिर पीछे पछताहुगे उधाव समुझाओ चित्त। इन दोहों में केशव दास जी विप्रलम्ब श्रृंगार के सम्राट सूरदास जी के निकट पहुँचे दिखलाई देते हैं। ऊपर दिए हुए उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग के चित्रण में केशव का पूरा आधिपत्य था, और श्रृंगार रस पर लिखने वाले हिंदी साहित्य से किसी भी कवि के छंदों के समकक्ष इस विषय पर लिखे गए केशव के छंद रखे जा सकते हैं। केशव के छंदों में कवि का गंभीर पर्यवेक्षण है और तन्मयता भी। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण रसिक प्रिया और कवि प्रिया नामक ग्रंथों में भरे पड़े हैं। हाँ, केशव के कुछ छंदों में अश्लीलता अवश्य है, किंतु बहुत कुछ यह उस समय और वह समाज का प्रभाव था जिसमें केशव उत्पन्न हुए थे। श्रृंगार रस पर लिखने वाला प्रायः कोई तत्कालीन कवि इस दोष से सर्वथा मुक्त नहीं है। यहाँ तक कि महात्मा सूरदास भी इस दोष से एकदम नहीं बचे हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि केशव दास जी भूषण के समान परिस्थितियों के निर्माता ना होकर परिस्थितियों द्वारा निर्मित थे। श्रृंगार से इतर रसों की व्यंजना। श्रृंगार रस के बाद यदि किसी रस के निरूपण में केशव को सफलता मिली है तो वह है वीर रस। रामचंद्रिका से केशव के वीर रस संबंधी छंदों के उदाहरण पूर्व पृष्ठों में दिए जा चुके हैं। यहाँ अन्य ग्रंथों से कुछ छंद उद्धृत किए जाते हैं। रतन बावनी नामक ग्रंथ में वीर रस का सबसे अच्छा परिपाक हुआ है। सम्राट अकबर की सेना से लोहा लेने के लिए प्रस्थान करते हुए योद्धाओं और सामंतों के प्रति कुंवर रतन सेन की विरोक्ति है। रतन सेन कह बात सुर सामंत सुनिज्य, करहु पैज पन धारी मारी सामंतन लिज्य। धरिय स्वर्ग अक्षरिय हरहु रिपु गर्व सर्व सब, जुरी करी सगर आज सूर मंडल भेदहु सब। मधु साह नंद इमी उच्चरई खंड खंड पिंडही करहु, कटरहु सुदंत हथियान के मृदहु दलिय प्रण धरहु। दूसरा ग्रंथ जिसमें कुछ स्थानों पर वीर रस का अच्छा निरूपण हुआ है, केशव का वीर सिंह देवचरित है। अकबर की सेना से मुठभेड़ न करने के लिए शिक्षा देने वाले क्षेत्रपाल के प्रति कुमार भूपाल राय का कथन है। मीत करही जनिभाति वंश रजनीति हमारो, व्रतधारी जस अमल ताही अब करो नकारो। राजनी के कुल राज कहा फिरी फिरी अवतार, अब तब जब कब करन कहत अब ही किनी मारियो। सूर सुरनी मंडल भेदी ज्यो बिना गए से हरि सरन, सब सुरजी मंडल भेदी त्यों राम देव देखें सरन। केशव के ग्रंथों में श्रृंगार अथवा वीर दो ही रसों की प्रधानता मिलती है, किंतु प्रसंगवश अन्य रसों का भी यथास्थान निरूपण हुआ है। रामचंद्रिका में कई स्थलों पर रौद्र रस का अच्छा परिपाक हुआ है। परशुराम द्वारा गुरु निंदा सुनकर शांतिशील राम को असीम क्रोध हुआ और उन्होंने परशुराम को ललकार कर कहा, भगन कियो भव धनुष साल तुमको अब सालों, नष्ट करो विधि सृष्टि ईस आसन ते चालो। सकल लोग सहरहु शेष सिर ते धर डारो, सप्त सिंधु मिली जाही होई सब ही तुम भारो। अति अमल ज्योति नारायणी कह केशव बुझि जाए वर, भृगुनंद संभारु कुठारु मैं कियो सरासन युक्त सर। इसी प्रकार लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर किसी से यह सुनकर कि सूर्योदय होने के पूर्व ही यदि लक्ष्मण को औषधि न दी जाएगी तो उनकी मूर्छा चिर निद्रा में परिणत हो जाएगी, राम शोक भूलकर रुद्र रूप ग्रहण कर लेते हैं। करी आदित्य अदृष्ट नस जम करो अष्ट बसु, रुद्रन बोरी समुद्र करो गंधर्व सर्व पशु। बलित अबेर कुबेर बलिही गही देऊ इंद्र सब, विद्याधरन अविद्ध करो बिन सिद्धि सिद्ध सब। निजु हो ही दासी दिति की अदिति, अनिल अनल मिटि जाए जल सुनि सूरज सूरज उवत ही करो असुर संसार बल। भयानक रस वीर रस का सहकारी है। राम की सेना के चलने पर राम के शत्रुओं पर जो आतंक छा जाता है उसका वर्णन करते समय कवि ने लिखा है कि व्याकुल होकर राम के शत्रु पर्वत कंदराओं में जाकर छिप जाते हैं। वस्त्रानुभूषण आदि इधर उधर बिखर पड़े हैं, उनको सहेज कर रखने की भी किसी को सुधी नहीं है। रामचंद्र किन्हें तेरे अरिकुल अकुलाए, मेरु के समान आन अजल घरीनी में। सारी सुखंस पिक को किला कपोत मृग, केसो दास कहूँ है करब करीनी में। डारे कहूँ हार टूटे, राते पीरे पट छूटे, फूटे हैं सुगंध घट स्त्रवत तरीनी में। देखी हत शिखर, शिखर प्रति देवता से सुंदर कुंवर अरु सुंदरी दरीनी में। महाराज वीर सिंह देव के युद्ध के लिए प्रयाण करने पर भी भय से संसार भर में खलबली मच जाती है। केशव का कथन है, भूतल सकल भ्रमित है गयो, लोक लोक कोलाहल भयो। गाजी उठे दिग्गज तिहकाल, संकित सकल अंक दिग्पाल। रौड़ पड़ी सुरपुरी अपार, बाढ़े सुरपति चित्त विचार। कल्प वृक्ष गज वाजी समेत, सौंपे सुरगुरु को इही हेत। धर्मराज के धकपक भई, दंड नीति कुंभज को दई। चिंता तरुण वरुण उर्गुनी, तब ही उतरी गई बारुनी। युद्ध के बाद युद्ध स्थल की दशा शमशान के समान हो जाती है, अतः केशव ने एक दो स्थलों पर युद्ध के प्रसंग में विभत्स रस का भी निरूपण किया है। वीर सिंह देव चरित ग्रंथ में ओछड़े के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, अतिरूरी राजत रंथली, जूझी परे तह है गए बली। खंडनी खंड लसय गज कुंभ, श्रोणित भर भवकंत भसुंड। घन घाईनी घाइल घर पड़े, जोगनी जोरी जंग सिर धरे। अंचल मुख पोंछती जगमगी, कंठ श्रोण प्रिय मारग लगी। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान गीता ग्रंथों में कवि ने कई स्थलों पर शांत रस की भी मार्मिक व्यंजना की है। निम्नलिखित छंद में कवि कहता है कि चार दिन के लिए संसार में आकर प्राणी सांसारिक वस्तुएं अपनी समझने लगता है, कैसा भ्रमजाल है। माछी कहे अपनो घर माछरु, मूसाओ कहे अपनो घरो ऐसो। कौन कोने घुसी कहे घुसी घिनौनी, बिलारी और ब्याल मिले महाबसव। काटत स्वान सो पक्षी और भिक्षुक, भूत कहें भ्रम जाल है जैसो। हो हूँ कहो अपनो घर तैसही, ता घरु सो अपनो घरु कैसो। नीचे दिए हुए छंद में पाप सागर के तैरने वाले मूढ़ जनों की करुणाजनक अवस्था का चित्र खींचा गया है। पैरत पाप पयो निधि में, नर मूढ़ मनोज जहाज चढ़ोई। खेल तव न तजय जड़ जीव बरु, बड़वानल क्रोध डर होई। झूठ तरंगिनी में उर्जे सुईते, पर लोभ प्रवाह बढ़ोई। बूरत है तेही ते उबरे कह के, सब काहे न पाठ पढ़ोई। हास्य रस श्रृंगार का सहायक माना गया है। केशव ने श्रृंगार की लपेट में स्फुट रूप से रसिक प्रिया के दो एक उदाहरणों में हास्य रस की बड़ी ही मधुर व्यंजना की। एक बार कृष्ण स्त्री के वेश में आए, गोपियों ने जाकर राधा से कहा कि महावंश से रति के समान एक सुंदरी आई है, जो इस प्रकार गाती है मानो स्वयं वीणा पानी सरस्वती पधारी हूँ। राधा ने उसे बुला लाने को कहा। उसके आने पर राधा सादर उससे मिली। यह देखकर वह उपस्थित अन्य गोपियां खिलखिलाकर हंसने लगी। आई है एक महावन ते, तिय गावत मानो गिरा पगुधारी। सुंदरता जनु काम की कामिनी, बोली कहियो वृषभानु दुलारी। गोपी के ल्याई गोपाल ही वे अकुलाई, मिली उठी सादर भारी। केशव भेटत ही भरी अंक हसी, सब कीक दे गोप कुमारी। अब कृष्ण के उपहासपद बनने की बारी थी। एक गोपी खाली मटकी सर पर रख, कुछ छाछ की छींटे मटकी पर डाले हुए उस ओर निकली जहाँ कृष्ण थे। कृष्ण ने उसे देख आगे बढ़कर दही के लालच में उस मटकी को उतारा। जब कृष्ण ने उसे खाली देखा तो खिसी आ गए। उधर गोपी अंचल की ओट में हंसती। सखी बात सुनो इक मोहन की, निकसी मटुकी सिररी हलकै। पुनि बांधी लई सुनिए नत, नारू कहूँ कहूँ बुंद करी छलकै। निकसी उही गैल हुते जहाँ, मोहन लीनी उतारी जब चलकै। पतु की धरी श्याम खिसाई, रह उत ग्वाल हसी मुख आचल के। केशव की भाव व्यंजना सरसक यही समाप्त होती है।